अब इसके बाद एक और खूबसूरत सूरत जो वो भी मक्की सूरत है, अल आरौफ, एक मुकाम है जिसका जिक्र है इसमें जन्नत और जहन्नुम के बीच में, उसकी नस्बत से ये सूरत है, 7 नंबर की सूरत है। और इस बारे में इसकी 87 आयतें हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सद्रिका हरज हरज मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही वज़िक्रा लिल्मुमिनीन। रुकू नंबर 8 है, पहली 10 आयतें, अल्लाह की किताब के ज़रिए खबरदार करना है। अलिफ लाम मीम स्वाद हरूफ मुक़त्तआत हैं। किताबुन उन्ज़िला इलैक, ये एक किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई कि आप इसके ज़रिए से डराएं, ये नोट कीजिएगा, बेहतरीन इंतज़ार किताब के ज़रिए से, बस आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी ना हो। और नसीहत है ईमान वालों के लिए, बस तुम लोग इसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और वो क्या, ये खूबसूरत किताब। और अल्लाह को छोड़कर मनगढ़ंत सरपरस्तों की पैरवी मत करो, ये कौन थे जिनका तذکرہ पिछली सूरत में आ गया, यानी उल्टे सीधे रस्म व रिवाज घड़ने वाले लोग। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो, और बहुत सी बस्तियों को हमने तबाह कर दिया, और इन पर हमारा अज़ाब रात के वक्त पहुंचा, या ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। बस जिस वक्त इन पर हमारा अज़ाब आया, इस वक्त इनके मुंह से सिवाय इसके और कोई बात ना निकली कि इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, वाकई हम जालिम थे। फिर हम इन लोगों से ज़रूर पूछेंगे क्वेश्चंस, क्या जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम पैगंबरों से भी ज़रूर पूछेंगे। फिर हम चूँकि पूरी खबर रखते हैं, इनके रूबरू बयान कर दें, और हम कुछ बेखबर भी ना थे। क़यामत के दिन नबियों का भी हिसाब होगा और कौमों का भी, और इस रोज़ वज़न भी बरहक होगा। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी हो, ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा, बस ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, बस सबब इसके कि हमारी आयतों के साथ वो जुल्म करते थे। और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। आप देखिए कि सूरत शुरू क्या हुई है, ऐसे लगता है कुरान की अजमत के गुण गाए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो नज़ूले कुरान के दो मकासद मिले हमें, पहली 3 आयत में इंज़ार और नसीहत, और ज़िक्रा लिल मोमिनीन, कुरान मोमिनों के लिए नसीहत है, अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की पसंद और नापसंद की वजाहत होती है, और शरीयत के मकासद की तफसील है। सहाबा कराम इसी कुरान पे अमल करते थे, इसलिए इस रुकू में आपको जो पलड़ों के भारी होने की बात पता चली, तो सहाबा के पलड़े कल क़यामत के दिन बहुत भारी होंगे। क्यों भला? उसकी वजह नंबर 1, कोई नेकी छोड़ते नहीं थे। अच्छा, हम वो नेकियां गिनते हैं जो हमने की हैं। आज से एक क्राइटेरियन दूं, रात को बैठकर अपने बिस्तर पे एक सवाल कीजिएगा और कागज़ पे लिखिएगा। चलें, खुश होने के लिए लिखें, आज अल्लाह ने मुझसे क्या क्या नेकी की, ये भी लिखिएगा। इससे आपका मोरल बुलंद होगा, यू फील कॉन्फिडेंट और यू फील ब्लेस। लेकिन साथ ही एक पेज पे लिखिएगा, आज मैं क्या क्या नेकी कर सकती थी और मैंने नहीं की, छोड़ दी। ये लिस्ट लंबी होगी कि वो, यकीनन ये लिस्ट लंबी होगी। दूसरी वजह सहाबा के अमाल पल्लों के भारी होने की क्या है, कि उनकी जिंदगियां हक पे मबनी थी, फितरत की रोशनी में पले थे सहाबा, फिर इखलास से अमाल करते थे, और अल्लाह की रजा की खातिर लोगों की खिदमत करते थे। कुफार के पलड़े हल्के क्यों होंगे क़यामत के दिन? नंबर 1, उनके अमाल बातिल थे, झूठ और दिखावे के लिए नेकियां करते थे, शैतान की पैरवी करते थे, और अल्लाह की बजाय इंसानों की खुशी के लिए अमाल करते थे। अल्लाह ताला बचा के रखे। अल्लाह की रज़ा को पाने के कौन से काम? लोगों को खबरदार करने से दिल तंग नहीं होना, यानी हम कहते हैं क्यों बताऊँ, बार बार क्यों, क्या बता, इस दफ़ा दरवाज़ा खुल जाए, कहीं ज़रूरत होती है ना, तो इंसान ठक 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 नॉक करते नॉक करते नॉक करते। आपको किसी से कोई काम और कॉल करे और वो उठाए ना, और वो बेचारा है भी आपका शौहर, छोड़ देते हैं, दोबारा करते हैं, 3-4 दफ़ा करते हैं, और फिर जो रात को शाम को उनकी शामत आती है, ये बताएं कि फोन किधर रखा हुआ था, है ना? जल्दी होती है ना, तो फिर हम एक नहीं, हम फिर कभी व्हाट्सएप पे करते हैं, कभी लोकल करते हैं, फिर उसको कहते हैं दूसरे फोन से करो, शायद मेरा नंबर नहीं उठा रहे, आप कीजिए, है ना? कि इतनी तलब है नहीं, क्योंकि अल्लाह करे कि हमारे दिल खुल जाए। फिर इसी तरह से किताब को नसीहत का ज़रिया बनाना है, किताब की पैरवी करनी है, और शुक्र की हकीकत को समझना है, अल्लाह ताला की आयतों पर अमल करना है, और शुक्र अदा करके मज़ीद शुक्र अदा करना है। रुकू नंबर 9 आयत 11-25, गुनाहों पर तौबा। और यहाँ लिख लीजिए कि आदम और इबलीस का किस्सा अब एक ख़ास रंग में आ रहा है, पूरा पढ़िए, फिर इंशाल्लाह इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। वलकत खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, पर सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको इस काम से किस चीज़ ने रोका, जबकि मैं तुमको हुक्म दे चुका हूँ। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। आज भी 98% गुनाहों के पीछे यही सोच होती है, आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको आपने खाक से पैदा किया। लिखिए रीजनिंग, अक्ल का इस्तेमाल इबलीस ने किया था पहले। हक ताला ने फरमाया तू आसमान से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे, बस निकल, बेशक तू जलीलों में से है। काला रब्बी फानजिर नीला योमी युबअसून, उसने कहा मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक की। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको मोहलत दी गई, इसने कहा बस अब इस के आपने मुझको गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और इनके पीछे से भी और इनके दाईं से भी और इनकी बाईं जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्र गुजार ना पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल जाओ, जो शख्स इनमें से तेरा कहना माने मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। और हमने हुक्म दिया कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों खाओ, और इस दरख्त के करीब मत जाओ वरना तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं किया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। देखिए झूठा है ना, अल्लाह के बारे में झूठ बांध रहा है। और इन दोनों के रूबरू कसम खाई कि यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, बस इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। फदल्लाहुमा भी गुरूर, बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा, चखा तो फल था, अल्लाह ने यहाँ दरख्त की बात कर दी, क्या पता चला कि दरख्त के करीब जाने वाले फिर फल भी चख जाते हैं, जो हराम चीज़ों के करीब जाता है वो फिर मज़ीद हराम में इंडल्ज हो जाता है, वो उससे मज़ीद ख़राब चीज़ों को ले लेता है। इसीलिए फरमाया कि बस इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया, बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रू बरू हो गईं, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ कर रखने लगे, और इनके रब ने इनको पुकारा क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका, और ये ना कहना कि शैतान तुम्हारा सरीह दुश्मन है, यानी शैतान को दोस्त से ज़्यादा दुश्मन समझो। सोचिए ज़रा क्या हम शैतान को ऐसे समझते हैं। दोनों ने कहा ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मग़फ़रत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो हम वाकई नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। हक ताला ने फरमाया कि नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन होगे, और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना है एक वक्त तक, फरमाया तुमको वहीं पर ज़िंदगी बसर करना है और वहीं पर मरना, और इसी में से फिर निकाले जाओगे, यानी तुम्हारा ठिकाना ही ज़मीन है। क्या पता चला कि शैतान ने अपना नुकसान खुद किया। आपको शैतानी रवैये दिखे, ज़िद, अना, अक्ल का इस्तेमाल, लॉजिक्स पेश करना, फिर ब्लेमिंग स्टाइल, अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचा ले। क्या सीखा हमने कि इंसान की अजमत को समझना है, इबलीस के दावे को समझना है, और आदम और हव्वा की अपने गुनाह पे तौबा से हमने भी अपने अपने गुनाहों पे तौबा करनी है। बुराई की तरफ माइल नहीं होना, तकब्बुर से बचना है और तौबा भी करनी है और रहम की उम्मीद भी रखनी है। क्या पता चला कि जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की बात मानेंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला पे नज़रें लगाएंगे, उतना अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। फिर इसके बाद आप देखिए कि आगे चलते हैं, रुकू नंबर 10 आयत 26 से 31, 26 से 31। दीन खालिस अल्लाह के लिए है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हमने आपके लिए लिबास उतारा यानी पैदा किया, जो आपकी शर्मगाहों को भी छुपाता है और जीनत का ज़रिया भी है, और तकवा का लिबास इससे भरकर है, अल्लाह की निशानियों में से है, ताकि याद रखें। ए औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे, जैसा कि इसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में इनका लिबास भी उतरवा दिया, ताकि वो इनको इनकी शर्मगाहें दिखाए। और वो लोग जो कोई फुहश काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया, और अल्लाह ने भी हमको यही बताया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फुहश बात की तालीम नहीं देता, कि अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद भी नहीं रखते। आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपना रुख सीधा रखो और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि इस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया, इसी तरह तुम दोबारा पैदा किए जाओगे। बस लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी है, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, और अगर दी भी है तो इस्तकामत दे। और बस पर गुमराही साबित हो गई, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया और ख्याल रखते हैं कि वो राह रास्त पर हैं। ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। क्या पता चला इस रुकू में? आप देखिए लिबास का तज़किरा आया। बाज़ाब्ता तौर पे कुरान में ये पहला मुकाम है कि जहाँ ड्रेस कोड की बात है, लिबास और हिजाब, फिर सूरत नूर और फिर सूरत अलासाब में आएगा। इंशाल्लाह हम तीनों को पढ़ने के बाद मौजू को पाइल अप करेंगे। यहाँ इतना पता चल रहा है आयत 26 से कि सहाबा का लिबास तकवा का लिबास था। तकवा क्या है? कल्ब और रूह का लिबास। इनमें अल्लाह की इताअत और डर का एहसास था और अपनी हैसियत और मकसद हयात को पा गए थे। सहाबा ने अल्लाह की ग़ुलामी का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ने उनको इज्जत अता की। अमल की बातें कहें कि तकवा का लिबास पहनना, लिबास जिस्म को ढांपने के लिए है, इसलिए ऐसा लिबास पहनिए जो सातिर हो। नसीहत हासिल करना, जब भी इबादत का वक्त आए उस वक्त जीनत इख्तियार करनी है और इबादत खालिस अल्लाह के लिए करनी है। इंसाफ करना, अल्लाह ताला हमें इस सब की तौफीक दे। आगे रुकू नंबर 11 आय 32 से 39। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती, अल्लाह की आयात का इल्म हासिल करना है। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए असबाब ज़ीनत को, जिनको इसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है, और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किसने हराम करार दिया है? ज़रा सा इस टोन को महसूस करें। ये तनकीद है उस दीनदार तबके पे कि जो दीन के नाम पे सारी ज़ीनत को तर्क कर देते हैं, बल्कि माजरत के साथ बेहंगमपन को दीन कहने लगते हैं। फलां को तो होश ही नहीं, बेचारी ने कंगी नहीं की, बदबू के भभोके आए, पसीना आए, लोग कहते बड़ा नेक है। आप पता कहला कि नबी से ज़्यादा साफ़ सुथरा बंदा कोई नहीं था। सफ़र में भी आपके इस खुशबू की शीशी होती थी, कंगी करते थे, बालों को तेल लगाते थे। तो अपने लिए ये नोट कीजिए कि दीन की खातिर अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, ये भी इबादत है। फिर इसी तरह फरमा दिया कि खाने पीने की चीज़ों को किसने हराम किया? आप कह दीजिए ये चीज़ें इस तौर पर कि क़यामत के रोज़ खालिस होंगी, ज़िंदगी में मोमिनों के लिए भी हैं। हम इसी तरह तमाम आयात को समझदारों के वास्ते साफ साफ बयान करते हैं। आप फरमा दीजिए कि अलबत्ता मेरे रब ने हराम किए इन तमाम फुखश बातों को जो एलानिया हैं और जो पोशीदा हैं। अब इस लिस्ट को नोट कीजिएगा, ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और हर गुनाह की बात को और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनत नहीं नाजिल की, और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात ना लगाओ जिसको तुम जानते नहीं। और हर गिरोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है, बस जिस वक्त इनकी मियाद मुअय्यन आ जाएगी इस वक्त तक एक साथ ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे। ऐ औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हों और जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करें, तो जो शख्स तकवा इख्तियार करे और दुरुस्तगी इख्तियार करे, इन लोगों पर कोई अंदेशा है ना वो गमजदा होंगे, यानी टेंशन फ्री। आज दुनिया में टेंशन है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो डिप्रेशन से बचने का नुस्खा दिया जा रहा है आपको मुझे। और जो लोग हमारे इन अहकाम को झुठलाएं और इनसे तकब्बुर करें, वो लोग दोजख वाले होंगे और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़रा सा दोजख के लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ हमेशा को याद करें और दुआ करिए कि अल्लाह हमें एक लम्हे के लिए भी जहन्नुम में ना डाले। बस उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बतलाए। इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से है वो इनको मिल जाएगा, हाँ जब तक के इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज़ करने के लिए आएंगे। मलकुल मौत की तरफ इशारा है। तो कहेंगे कि वो कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। वो कहेंगे वो सब हमसे गायब हो गए और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके जन्नात में भी और दोजखियों में भी, इनके साथ तुम भी दोजख में जाओ। जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी अपनी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें वो सब जमा हो जाएंगे तो फिर पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार इन लोगों ने गुमराह किया था, बस इनको दोजख का अजाब दे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि सभी का दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं। क्या महसूस हो रहे हैं आयतों को पढ़ के? दुआ कीजिए अल्लाह किसी को आग में ना डाले। और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे फिर तुमको हम पर कोई फौकियत तो नहीं थी, बस तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का मजा चखो। अल्लाह तो खोल खोल कर एक एक बात दे रहा है। अल्लाह अमल की तौफीक भी अता फरमा दे हमें। क्या पता चला कि अल्लाह की रज़ा को पाने वाले अमाल, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, आयात का इल्म रखना, इसलाह करना, दूसरों को गुमराह नहीं करना, तकब्बुर से बचना और बेहयाई से बचना है। आगे है जी रुकू नंबर 12 आयत 40 से 47, हिदायत याफ्ता होना। पहले तो दुआ करते हैं अल्लाह में हिदायत अता फरमाए। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और इनसे तकब्बुर किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे और वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक के ऊँट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए। और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। इनके लिए आतशे दोजख का बिछोना होगा, इनके ऊपर इसी का उड़ना होगा। और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। और इसके बरक्स जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए, हम किसी शख्स को इसकी कुदरत से ज्यादा काम नहीं बताते, वही लोग जन्नत वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। क्या पता चला, अल्लाह ज़ाया नहीं करता बंदे के अमल। और जो कुछ इनके दिलों में कीना वगैरह था इसको हम ख़त्म करेंगे। इनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया और हमारी कभी रसाई ना होती अगर हम अल्लाह ताला को ना पहचानते। और वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची बातें लेकर आए थे और इनसे पुकार कर कहा जाएगा इस जन्नत के तुम वारिस बनाए गए हो। वारिस तुम हो क्यों? अपने अमाल के बदले। दुआ कीजिए कि ये पुकार हमें भी सुनाई दे। और अगली आयतों को ज़रा सा विजुलाइज कीजिए। और अहले जन्नत अहले दोजख को पुकार कर कहेंगे हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था हमने इसको वाकई के मुताबिक पाया, बस तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था क्या तुमने भी उसको सच पाया? वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाला दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो इन जालिमों पर। वो कौन? अब नोट कीजिएगा ज़रा जालिमों की खूबियां। वो जो अल्लाह की राह से रूगरदानी करते थे और इसमें टेढ़ापन तलाश करते थे, और वो लोग आखरत के भी मुनकिर थे। और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और आराफ के ऊपर बहुत से लोग होंगे। वो लोग हर एक को इनके क्याफे से यानी निशानियों से चेहरों से पहचानेंगे और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे अस्सलामुअलैकुम। अभी ये अहले आराफ दोजख और जन्नत के दरमियान جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اس پہ ایک روایت آتی امام سدی سے، کہتے ہیں کہ اہل جنت دروازہ جنت پر ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑوں کے پاس سے دو نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں سے ایک کا پانی پئیں گے جس سے دلوں کی کدورتیں دھل جائیں گی، یہ شراب طہور ہے، پھر دوسری نہر میں غسل کریں گے جس سے چہروں پر تر و تازگی آ جائے گی، پھر نہ تو بال بکھریں گے نہ سرما لگانے اور سنگھار کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا میں فیس ٹریٹمنٹ کتنا مہنگا ہے، ہائیڈرا فیشیل، فوٹو فیشیل، پیلنگ اور نہ جانے کیا کچھ۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ ایسا سجا اور سوار دیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس کی روایت ہے، آراف ایک دیوار ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اصحاب عراف وہیں ہوں گے، جب انہیں عافیت دینے کا ارادہ ہوگا یعنی جب ان کو وہاں سے ہٹانا ہے تو حکم ملے گا کہ انہیں نہر حیات کی طرف لے جاؤ، جنت کے باہر، اس کے دونوں کناروں پر سونے کے خیمے ہوں گے، امیجن کریں، جو موتیوں سے مرصع ہوں گے، پرلز اور ریئل بیڈز اور ریئل موتی لگے ہوں گے، اس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی، مشک اتنی سی بھی اتنی مہنگی، اس میں غوطہ لگاتے ہی ان کی رنگتیں نکھر جائیں گی، رنگ گورے ہو جائیں گے، اور ان کی گردنوں پر ایک سفید چمکیلا نشان ہو جائے گا جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو چاہو مانگو، یہ مانگیں گے، یہاں تک ان کی تمام تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، اور پھر فرمائے گا ان جیسی 70 گنا نعمتیں اور بھی میں نے تمہیں دی، پھر یہ جنت میں جائیں گے اور وہ علامت ان میں موجود ہوں گی جنت میں بھی، اور ان کا نام مساکین اہل جنہ ہوگا۔ کہیں ایک اور جگہ کہتا ہے اتق الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ قیدی، پھر ان کو شرم آئے گی اس سے، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ بھی مٹا دے گا۔ تو اصحاب عراف کون ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں؟ پوسٹ بونڈ ریزلٹ والے، جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، جنت میں داخلے کے امیدوار ہیں۔ آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ اللہ کی رضا والے کام، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، آیات کو نہ جھٹلانا، اللہ کے راستے کو مشکل نہ بنانا، اور اللہ کی راہ سے نہ روکنا، اور تکبر نہ کرنا۔ یہ جو خاص طور پہ اللہ کی راہ سے روکنے والی باتیں نا، آج یہ بہت عام ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ لے سکیں۔ بات ذہن میں رکھیے گا، آج جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلنا اور وہ وقت آ جانا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عراف پہ بھی نہ روکے، وہ بڑی حسرت ہے۔ کبھی آپ کی سپلی آئی ہے کسی میں امتحان میں، رزلٹ پوسٹ پون ہے، سب کا آگے اور آپ کا نہیں آیا، بس وہی وقت ہے۔ تو یہاں پہ ہم رکیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔